नमस्कार भारत, 3 नवंबर शनिवार, मैं हूं आदर्श राठौर। पाकिस्तान में आसिया बीबी ईश निंदा मामले में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान सरकार के बीच समझौता।
पाकिस्तान में इंसदादे तोहीने रिसालत का जो कानून है, दरअसल उनको खत्म करने का एजेंडा है।
आज से शुरू होगी पाकिस्तान के लाहौर से चीन के काशगर तक बस सेवा, भारत कर रहा है विरोध।
कोई निजी कंपनी है, उन्होंने कोई बिजनेस या वेंचर शुरू किया, इसमें पाकिस्तानी रियासत का कोई काम नहीं है।
जानेंगे चुनाव के समय राम मंदिर के लिए प्राइवेट मेंबर बिल क्यों ला रहे हैं सांसद राकेश सिन्हा।
यदि मुझे महसूस होता है कि इस मुद्दे पर मैं एक बिल ला सकता हूं, तो लोगों को इस बात पर क्यों आपत्ति।
होगी विवेचना और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआसिनी से। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी किए जाने के बाद वहां शुक्रवार को कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब सरकार और प्रदर्शनों के मुख्य आयोजक रहे धार्मिक संगठन तहरीके लब्बैक में समझौता हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वो सभी प्रतिबंध दोबारा लगा दिए हैं जो साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत हटा लिए गए थे। इन प्रतिबंधों के तहत अमरीका उन देशों के खिलाफ भी कठोर कदम उठा सकता है जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 देश ऐसे भी हैं जिन्हें इससे रियायत मिली है। इन 8 देशों में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने इसी साल मई में अमरीका को इस समझौते से अलग कर लिया था। 2015 में हुए समझौते के तहत ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ था। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने पहली बार सऊदी अरब की सरकार पर पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि अर्दोगान ने तुर्की के साथ सऊदी के दोस्ताना रिश्तों पर जोर देते हुए ये भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि इसमें किंग सलमान की कोई भूमिका नहीं है। ये बातें उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे एक लेख में कही हैं। वहीं खाशोजी की गमगीन मंगेतर हतीजे जेगिंग्स ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से जांच में मदद की अपील की है।
I would like to say to Jamal's influential friends that even though
मैं जमाल के प्रभावशाली दोस्तों को बताना चाहूंगी कि उनकी हत्या के एक महीने बाद भी उनका शव उनके करीबियों को नहीं सौंपा गया है और इसलिए उनकी याद में प्रार्थना सभा तक आयोजित नहीं की जा सकी है। हमारा दर्द आज भी उतना ही ताज़ा है जितना पहले दिन था। खाशोजी की मंगेतर हतीजे जिगिंग्स के शब्द। सऊदी अरब की सत्ता के मुखर आलोचक रहे पत्रकार और लेखक जमाल खाशोजी की तुर्की स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि उन्हें यमन में युद्ध खत्म होने की उम्मीद और संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुटेरेश ने यमन के घनी आबादी वाले इलाकों पर हो रहे हमले रोकने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वहां खाने की चीज़ें, ईंधन और बाकी ज़रूरी सामानों को बिना किसी रुकावट के पहुंचने दिया जाए।
This is not a natural disaster. It is man-made. And Yemen today stands...
ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसानों का किया धरा है और यमन आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। मानवीय नज़रिए से देखें तो यहाँ हालात बेकाबू हैं। हमें इन हालात को और बिगड़ने से बचाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो करना चाहिए। हम यहाँ कई सालों में आई सबसे बुरी भूखमरी और अकाल के चश्मदीद हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश के शब्द। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा है कि उन्हें क्यूबा के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने की कोई वजह नहीं दिखती। उन्होंने ब्राज़ील के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में क्यूबा पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। बोल्सोनारो ने कहा कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के पास उन्हें व्यापार और कारोबार के लिहाज से देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। पाकिस्तान में आसिया बीबी की रिहाई के फैसले से खफा लोग कल दिन भर सड़कों पर रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। आसिया बीबी को ईश निंदा के कानून के चलते मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने पलट दिया था। कल पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और फोन लाइनें भी बंद रहीं। मगर रात को पाकिस्तान सरकार और प्रदर्शन कर रहे संगठन तहरीके लब्बैक के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने आसिया बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने और इस मामले पर पुनर्विचार याचिका का विरोध न करने पर सहमति जताई है। लेकिन इससे पहले कल पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुए। सुनिए इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था।
इससे पहले लोअर कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट है उससे भी सजा हुई, हाई कोर्ट से भी सजा हुई, लोअर दोनों कोर्ट से सजाएं मौत दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आकर इस फैसले को तब्दील किया गया। तो हमारा एक बिल्कुल जायज़ और मुतालबा है कि जो तौहीन रिसालत की मुलज़मा है आसिया मसीह, उसको उस फैसले के मुताबिक सजाए मौत दी जाए।
पाकिस्तान में इंसदाद तौहीन रिसालत का जो कानून है, दरअसल उनको ख़त्म करने का एजेंडा है और ये एक उसी की एक कोशिश है। हम इस मामले को अलग करके नहीं देख रहे, बल्कि उस सारे तनाजुर में हम इसको देख रहे हैं।
अब पाकिस्तान सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता तो हो गया है, लेकिन कल पाकिस्तान में धरना प्रदर्शनों के बीच जमीयत उलेमाए इस्लाम की अपनी शाखा के प्रमुख मौलाना समी उल हक की रावलपिंडी में हत्या की खबर आई। मौलाना समी उल हक को पाकिस्तान में तालिबान का जनक भी कहा जाता है। वो एक प्रभावशाली धर्मगुरु माने जाते थे, जिनसे हजारों तालिबान लड़ाकों ने तालीम हासिल की थी। इस हमले को भी, उनकी हत्या को भी पाकिस्तान में पैदा हुए माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। इन कयासों में कितनी सच्चाई है और आखिर पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देने वाले ईश निंदा कानून को लेकर वहां के आम लोगों की सोच क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी से बात की।
देखिए, ईश निंदा का जो कानून है, उस कानून के बारे में तो बार बार, हत्ता के इस अदालती फैसले में भी कहा गया कि कानून जो है वो बरकरार है और जो ईश निंदा है इस्लाम के खिलाफ या खास तौर पे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद के खिलाफ, वो जो है वो एक गुनाह है और जुर्म है। लेकिन साथ ही साथ में लोग ये भी समझते हैं कि इस ईश निंदा के कानून का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। अदालत ने आसिया बीबी के फैसले में खुद ये लिखा कि पिछले 28 साल में 62 लोग ऐसे थे जिन पर ये इल्जाम लगा, इससे पहले कि उनके मुकदमे पूरे होते उनको पहले ही मार दिया गया। तो एक तरह से हमने ये देखा है कि इस मुद्दे पे इस बार जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हुकूमत है, जुडिशरी है, फौज है या फिर आम लोग हैं, वो इस पर कम से कम इस हद तक तो खड़े हुए नजर आ रहे हैं कि ये कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ईश निंदा के कानून को तो यहाँ पर कोई बुरा नहीं कहता, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, ऑनर जो है प्रॉफिट का उसको लेकर, लेकिन इस बात पे सब जो है वो इस बार इत्तफाक उनका दिखाई देता है कि इसका गलत जो इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी दिखाई जानी चाहिए। और अगर कोई गलती से कत्ल हो जाता है इस कानून का गलत इस्तेमाल होने पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है।
जो ये समी उल हक थे, क्या इनकी जो ये हत्या है, इसको हम पाकिस्तान में पिछले दो दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन से जोड़ के देख सकते हैं?
देखें, वैसे तो चूंकि मौलाना जो है वो एक अलग सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट के मौलाना थे, जो आजकल पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं उनसे इनका जो जो सेक्ट है या नजरिया है वो कुछ मुख्तलिफ था। लेकिन पाकिस्तान में जो एनालिस्ट हैं वो इसको इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की इंतहाई खराब सूरत हाल है उससे जोड़ रहे हैं, और उनका कहना ये है कि लगता ऐसे है कि किसी ने इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की है ताकि हालात जो है वो और खराब हो जाएं।
तो पाकिस्तान में ये धरना बेशक खत्म हो गया है, लेकिन ये मामला पूरी तरह शांत होता अभी दिख नहीं रहा। पाकिस्तान से ही एक और खबर की बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। वो चीन से पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद के साथ वहां पहुंचे हैं। इसी बीच आज से पाकिस्तान और चीन के बीच एक निजी बस सेवा भी शुरू होने जा रही है, लेकिन भारत ने इस बस सेवा पर विरोध दर्ज कराया है। आखिर पाकिस्तान से चीन के बीच कैसे चलेगी ये बस सेवा और भारत को इससे आपत्ति क्या है, सुनिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी की इस रिपोर्ट में।
चीन और पाकिस्तान के बीच आज से निजी बस सेवा शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर से यह बस चीन के काशगढ़ तक जाएगी। इस बस में यात्रा के लिए पासपोर्ट, वीजा और वापसी टिकट जरूरी होगा। टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। यह बस सेवा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक पर शुरू होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर जाने वाली इस बस सेवा का चीन और पाकिस्तान से कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। आखिर सीपैक कॉरिडोर से भारत को आपत्ति क्या है, इस बारे में बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता कहते हैं,
भारत का जो ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, उसका बेसिस यह है कि ये जो सड़क है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सड़क है, वो कश्मीर में से निकल रही है और कश्मीर का वो हिस्सा जिसको भारत अपना मानती है, तो आप कैसे भारत के हिस्से से बस चलवाएंगे या सड़क बनवाएंगे। तो उस हिस्से पे जब भी कोई भी काम होता है, भारत उससे आपत्ति बताता है।
भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं को लेकर पुराना विवाद रहा है। वक्त बेवक्त यह विवाद बढ़ता भी रहता है। बीते वक्त में भी भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद सुर्खियों में रहा था। ऐसे में अगर भारत के विरोध को चीन बिल्कुल दरकिनार कर देता है तो क्या यह भारत का अपमान माना जाएगा? चीन मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह इस विषय में कहते हैं कि असल में यह चीन का ही अपमान होगा।
नहीं, अपमान तो भारत का नहीं, उसमें अपना ही उनका अपमान है, क्योंकि चीन की अपनी नीतियों के ही विरोध में ये एक तरह से प्रस्ताव है, तो अपनी नीतियों को ना मानने के लिए उन पर भी उंगली उठाई जाएगी।
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है और पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक मदद की मांग भी की है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के चीनी सीमा से सटे इलाकों में चीनी निवेश से आधारभूत ढांचे में विकास में भी तेजी आई है। पाकिस्तान और चीन के बीच साल 2005 में भी बस सेवा शुरू करने का प्रयोग किया गया था, लेकिन वह नाकाम साबित हुआ था। उस समय पाकिस्तान के गिलगित से काशगर तक बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन बाद में वह बंद करनी पड़ी। इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता हारून रशीद इस विषय में कहते हैं,
अभी ये जो नया वेंचर लॉन्च हुआ है, ये लाहौर में कोई निजी कंपनी है, उन्होंने कोई बिजनेस ये वेंचर शुरू किया, इसमें स्टेट पाकिस्तानी रियासत का कोई काम नहीं है, और उनका कहना है कि ये कोई 24,000 पाकिस्तानी रुपयों में रिटर्न टिकट इसका होगा और ये आपको लाहौर से काशगर लेके जाएगी। आपको पता ही है दोनों देशों के दरमियान जब से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट हैं तो काफी लोगों का आना जाना बढ़ा हुआ है, ट्रेड भी काफी बढ़ गई है।
पाकिस्तान ने अभी तक भारत के विरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए यह बस सेवा कई मायनों में खास है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी यह एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल है। नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के बहाने सरदार पटेल की विरासत पर दावेदारी, बीजेपी नेताओं का आरोप, कांग्रेस ने नहीं दिया लौह पुरुष को सम्मान, राहुल गांधी की दलील, कांग्रेसी थे सरदार पटेल, सियासत की जंग में सरदार पटेल पर किसका कितना हक, इस बार इंडिया बोल में होगी इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 3 नवंबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत में लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों की दूरी पर है, लेकिन इससे पहले देश के 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी सरगर्मियों के बढ़ने के बीच सत्तारूढ़ दल बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को उठाने लगे हैं। ऐसी मांग की जा रही है कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार कानून बनाए। इस बीच राज्यसभा में बीजेपी की ओर से मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि वो संसद में राम मंदिर के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। उन्होंने विपक्षी नेताओं के पाले में गेंद सरकाते हुए कहा है कि क्या विपक्ष इसमें उनका साथ देगा? आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या है और चुनाव के वक्त ही बीजेपी को राम मंदिर की याद क्यों आती है? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने राकेश सिन्हा से इन्हीं सवालों के जवाब जानने चाहे।
देखिए, संसदीय जनतंत्र की जो परंपराएं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैंने जो सवाल खड़ा किया तो मुझ पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं एक संसद सदस्य हूँ और मैं राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा हूँ। यदि मुझे महसूस होता है कि इस मुद्दे पर मैं एक बिल ला सकता हूँ तो लोगों को इस बात पर क्यों आपत्ति है? सवाल यह है कि मैं बिल लाऊं या सरकार बिल लाए, या सवाल यह है कि इस मुद्दे का निदान होना चाहिए। जो लोग मुझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और उनको मैंने अपने जो सवाल खड़ा किया था उनको डायरेक्टली मैंने ये सवाल पूछा था। ये है राहुल गांधी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी और चौथे चंद्रबाबू नायडू जी। ये चारों आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्टेक होल्डर हैं। उनसे मेरा सवाल यह है कि आप उस स्थान को जन्म स्थान मानते हैं या नहीं मानते? कोर्ट का हवाला देकर आप बच नहीं सकते।
राकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ऐसा क्यों होता है कि जब जब देश में राजनीतिक माहौल होता है तभी तभी जो है राम मंदिर का मुद्दा गरमाया जाता है अलग अलग तरीके से?
आपकी जब नजर जाती है तब लगता है ये मुद्दा उठा है। हिंदुओं का एक धर्म संसद है जो निरंतर इस मुद्दे को के समाधान के लिए प्रयास करती रही है। जब यह मुद्दा कुछ साल से कोर्ट में था और ऐसा लगा कि कोर्ट इसका त्वरित निर्णय देकर फैसला करेगा, तो हिंदू समाज ने जिसने 500 साल तक अपने धैर्य धारण किया था उसने फिर कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा किया। यहाँ तक कि उसके बाद भी नए मुख्य न्यायाधीश जी के आने के बाद ही प्रतीक्षा हुई, और तब जब न्यायालय ने यह कह दिया कि यह हमारी प्राथमिकता में नहीं, तब हिंदू समाज ने अपने धैर्य को तोड़ा और लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रश्नों का समाधान ढूंढना क्या अनैतिक है, क्या अमर्यादित है?
लेकिन ये तो स्पष्ट बात है ना सर कि जब देश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है तो कुछ खास पार्टियां हैं जिनको फायदा पहुंचता है, और उनमें से एक आपकी पार्टी भी है, आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं।
नहीं देखिए, जिन लोगों की जैसी नजर होती है वैसे ही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना काउंटर कम्युनिज्म कहा जाता है, प्रति सांप्रदायिकता कहा जाता है, ये डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन की बात करता है। हम सांप्रदायिक राजनीति उसे मानते हैं जो तुष्टिकरण की नीति अपनाता है, जो अल्पसंख्यकवाद को आगे बढ़ाता है और अल्पसंख्यकवाद के नाम पर अपने इतिहास, विरासत और अपने नायकों को किसी अवहेलना करता है। ऐसी राजनीति के खिलाफ संघर्ष करना एक लोकतांत्रिक सांस्कृतिक अभियान है।
अच्छा राकेश जी, ये बताइए, एक तरफ तो आपकी पार्टी की ओर से, आपके संगठन की ओर से कहा जाता है कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, उसके फैसले का सम्मान करते हैं और उसका आप इंतजार भी कर रहे हैं धैर्य से, ऐसा आपने कहा, और एक तरफ आपके ही मात्र संगठन की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि अध्यादेश तुरंत आना चाहिए नहीं तो जन आंदोलन होगा, तो क्या ये अदालत को डराने धमकाने की कोशिश के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए?
देखिए, जिस व्यक्ति को भी संसदीय जनतंत्र के बारे में मालूम है वह ऐसा प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। संसदीय जनतंत्र में संसद की संप्रभुता स्वीकार की गई है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के देशों में न्यायालय के फैसले के से ऊपर जाकर संसद ने कई बार अध्यादेश जारी किया है, कई बार कानून बनाया है, और आज भी यही मांग की जा रही है। यह संसदीय जनतंत्र के दायरे में किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस बनाना, ट्रिपल तलाक पर भी ऑर्डिनेंस बना, जमींदारी एवोल्यूशन बिल के आधार पर भी ऑर्डिनेंस बना, जमींदारी एवोल्यूशन बिल जब पहले जब जमींदारी एवोल्यूशन को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था तो संसद ने कानून बनाया था। इसलिए यह सब वही लोग कहते हैं जो कुतर्क देते हैं और संसदीय जनतंत्र की अवहेलना करना चाहते हैं।
आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को, और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। सिंधुवासिनी, क्या कहते हैं अखबार?
जी आदर्श, जैसे कि हम अभी ये रिपोर्ट सुन रहे थे और आप भी बता रहे थे, तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा और संघ के सरकार्यवाहक भैया जी जोशी का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मुद्दे की सुनवाई टलने से करोड़ों हिंदू अपमानित महसूस कर रहे हैं
जी।
और जोशी ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मंदिर के लिए 1992 की तरह आंदोलन करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद वो राम मंदिर के लिए कानून ला सकती है
जी।
और उन्होंने कर्नाटक विधानसभा का उदाहरण दिया जहां कावेरी जल विवाद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टालने के लिए एक कानून पारित किया गया था
जी।
इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में कल की ही बात है, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं, उन्होंने ट्विटर पर इशारों ही इशारों में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के हालिया भाषण का मजाक उड़ाया। उन्होंने जो ट्वीट किया वो कुछ इस तरीके का था कि रुपया डॉलर के मुकाबले उछलकर 73 पे आ गया है, कच्चे तेल का दाम $73 से नीचे है, $73 प्रति बैरल से नीचे है, शेयर बाजार में 4% का उछाल है, क्या यही बाजार में हाहाकार है। दरअसल विरल आचार्य ने पिछले हफ्ते अपने एक भाषण में कहा था कि जो सरकारें केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता का सम्मान नहीं करती वहां के बाजारों में हाहाकार मच जाता है। इसके अलावा एक अच्छी खबर है जनसत्ता में, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसलों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा जल्दी ही, और हिंदी के बाद यही प्रक्रिया क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी अपनाई जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ कही उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संक्षिप्त रूप देकर उन्हें एक दो पन्नों में जारी किया जाएगा ताकि वो आम लोगों को भी समझ में आ सके
जी। सिंधुवासिनी, अमर उजाला में ये खबर है कि हर अध्यादेश संविधान से छल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और साथ ही तीन तलाक पर अध्यादेश के खिलाफ शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार किया, और साथ ही ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 100 महिलाओं को ट्रिपल तलाक प्रमुख के तौर पे नियुक्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधुवासिनी। अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय से लगभग 4 दशकों तक सीने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले पृथ्वीराज कपूर ने कपूर ब्रांड की नींव रखी थी। पृथ्वीराज कपूर की 112वीं जयंती पर रेहान फजल याद कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर आज की विवेचना में।
हम एक लाडली बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते।
तकदीरें बदल जाती हैं,
मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता, मगर तुझे बदलना होगा।
ये आवाज है भारतीय नाट्य और फिल्म जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर की। पापा जी के नाम से मशहूर पृथ्वीराज कपूर के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी 1928 में, जब पेशावर से चली फ्रंटियर मेल बंबई के कोलाबा स्टेशन पर रुकी थी और जेब में 75 रुपये और हाथ में सूटकेस और हॉकी स्टिक लिए हुए 21 साल का नौजवान प्लेटफॉर्म पर उतरा था। उसने अपनी गरजती हुई आवाज में विक्टोरिया वाले से कहा था, मुझे समुंदर देखना है। बाद में वही विक्टोरिया वाला उन्हें मेट्रो सिनेमा के सामने कश्मीर होटल ले गया, जहां एक रात का किराया था 5 रुपये। फिल्म एक्स्ट्रा से अपने करियर की शुरुआत कर पृथ्वीराज कपूर ने पहले कुछ अवाक फिल्मों में काम किया और फिर पहली बोलती फिल्म आलमारा के हिस्सा बने। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान तब हुई जब उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में सिकंदर की भूमिका निभाई। जाने माने फिल्म समीक्षक और इतिहासकार प्रदीप सरदाना बताते हैं,
जब ये अपना टॉकी शुरू हुआ सवाक फिल्मों का युग 1931 में, तो पहली फिल्म आलमारा आई तो उसमें पृथ्वीराज कपूर को लिया गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी तक तो साइलेंट फिल्में चलती थी, किसी को कुछ पता नहीं था, कोई डायलॉग नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक्शन से बात होती थी। तो किसी ऐसे कलाकार को लिया है जिसकी आवाज़ में खूब दमखम हो। इसी तरह सोहराब मोदी, वो भी अपनी वॉइस के लिए जाने जाते थे। तो ये दोनों कलाकार ऐसे हुए अपने अभिनय और अपनी आवाज़ के कारण आगे चलकर सवाक फिल्मों में शुरुआत का जो दौर था कि नेत्रहीन लोग भी इनकी फिल्मों को देखने जाते थे, उनको आनंद आता था इन दोनों की आवाज़ सुनकर। तो ये दोनों कलाकार सिकंदर के अंदर इकट्ठे हुए, इन्होंने सिकंदर की भूमिका की और सोहराब मोदी ने पोरस की भूमिका की।
एसडी गर्गा अपनी किताब सो मेनी सिनेमाज में लिखते हैं कि उन दिनों जो भी सिकंदर के सेट पर जाता था, पृथ्वीराज कपूर शॉर्ट्स पहने अपने पुट्ठे फुलाते दिखाई देते थे। मधु जैन भी अपनी किताब द कपूर्स में लिखती हैं,
सिकंदर की शूटिंग के दौरान सोहराब मोदी ने यहाँ तक पता कर लिया था कि असल जिंदगी में सिकंदर का वजन क्या हुआ करता था। हर दूसरे दिन पृथ्वीराज कपूर के कपड़े उतरवाकर उनका वजन लिया जाता था। एक बार मोदी जब सेट पर पहुंचे तो पृथ्वीराज सिकंदर के वेश में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ना तो वो खड़े हुए और ना ही उनका अभिवादन किया। जब सोहराब मोदी ने इसका कारण पूछा तो पृथ्वीराज ने जवाब दिया, सिकंदर सोहराब मोदी को नहीं जानता। मोदी ने अपने सिकंदर को सल्यूट करते हुए कहा, लेकिन मैं सिकंदर को जानता हूँ।
एक रात प्यार उसमें है चिराग, ये चिराग जितनी देर जल सके जलाए जा, ये चिराग जितनी देर जल।
मुगले आजम को हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म बनाने में पृथ्वीराज कपूर का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अकबर की भूमिका जिस शिद्दत से निभाई, उसके बाद से लोग अकबर की कल्पना ही पृथ्वीराज कपूर के रूप में करने लगे। पृथ्वीवालास की सहलेखिका दीपा गहलोत बताती हैं,
उनका ग्राउंडिंग थिएटर में था तो वो अपने थिएटर में भी रियलिज्म पे बहुत ध्यान देते थे, और लेकिन फिर बड़े स्टार होने के बावजूद उनमें कोई नखरे ही थे। ऐसे मैंने सुना है कि मुगले आजम के टाइम पे एक सीन था जब वो गरम रेत पे चल के जाके अजमेर में मन्नत मांगते हैं और पृथ्वीराज जी एक्चुअली गरम रेत पे नंगे पांव चले थे।
मुगले आजम से जुड़ा हुआ ही एक किस्सा प्रदीप सरदाना सुनाते हैं, जब मुगले आजम के क्रेडिट्स में पृथ्वीराज कपूर का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला के ऊपर रखा गया।
दिलीप कुमार और मधुबाला चाहते थे कि उनका नाम पहले आए, हीरो हीरोइन तो हम है, पृथ्वीराज कपूर का नाम पहले कैसे आ रहा है। पृथ्वीराज कपूर ने कहा, अरे दे दो यार उसका नाम दे दो। क्योंकि नहीं साहब, वो ये भूल रहे, ये फिल्म सलीम अनारकली नहीं है, ये फिल्म मुगले आजम है, हीरो आप है इस फिल्म के, और अड़ गए कि आसिफ और पृथ्वीराज कपूर जी का नाम भी पहले गया।
पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। उन्होंने भारत के 112 शहरों और कस्बों में कुल 2662 शो किए।
हालांकि वो ग्रुप के लीडर थे और ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया था, वो अपने एक्टर्स और सब टेक्नीशियंस के साथ सेकंड क्लास बोगी में ट्रैवल करते थे। मतलब वो पूरा एक ट्रेन का बोगी ले लेते थे और एक सब लोग साथ में ही ट्रैवल करते थे। और जब छोटी छोटी जगहों में जाते थे, वहाँ काफी बार होटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो या धर्मशाला में या किसी स्कूल में उनको ठहराया जाता था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे, क्योंकि मैं बड़ा एक्टर हुआ, मैं बड़ा स्टार हुआ, मैं ग्रुप का लीडर हूँ, मुझे अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए। किसी को ये वो नहीं जाहिर होने देते थे कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं फेमस हूँ।
16 सालों तक एक दिन छोड़कर होने वाले हर शो में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। एक दिन भी उन्होंने शो नहीं मिस किया। 104 डिग्री बुखार होने पर भी उन्होंने काम किया। उनके शो में हर कोई बराबर होता था और हर एक के साथ एक जैसा सलूक किया जाता था। राज कपूर ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
मेरे मुझे पिताजी पृथ्वीराज जी ने तो कोशिश की थी कि मैं बहुत कुछ जितना सीख पाऊँ सीख लूँ। हर महकमे में उन्होंने मुझे चाहा कि मैं वहाँ हिस्सा लूँ और काम को देखूँ सुनूँ और उसे सीखने की कोशिश करूँ। और ये कलाकार अभिनेता बनना तो एक्सीडेंटल हुआ, जबकि पृथ्वीराज जी ने मुझे वो छोटा सा पार्ट अपनी प्ले में, जो नया नाटक उन्होंने तब खेला था दीवार, मैंने उसमें वो छोटा सा जो पार्ट किया था। तब उससे पहले मैं फिल्मों में काम करता था, तो मैं एक क्लैपर बॉय था जी, डायरेक्टरों के थर्ड फोर्थ असिस्टेंटों से भी नीचे, स्टूडियोज में झाड़ू लगाने वाले की हैसियत से मैंने शुरू किया था।
हर कोई पृथ्वीराज कपूर की दरिया दिली की कहानी सुनाता है। उनके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। मधु जैन लिखती हैं,
जब भी कोई मदद के लिए उनके पास आता, वो पूछते, तुम क्या कर सकते हो। एक बार जब उन्होंने एक अधेड़ व्यक्ति से यही सवाल पूछा, तो उसने कहा, मैं आपको तमिल सिखा सकता हूँ। पृथ्वीराज उससे तमिल सीखने लगे। उसी तरह एक पठान ने उन्हें पश्तो सिखाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि उन्हें एक दिन में 6 मास्टर्स पढ़ाने लगे। वो अपने हर मास्टर को 200 रुपए महीने देते थे। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था उनके पास आया। पापा जी ने उससे पूछा, तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा, कुछ भी नहीं। पापा ने कहा, क्या तुम मालिश कर सकते हो। उसने कहा, हाँ। और अगले दिन से वो रोज उनकी मालिश करने आने लगा। इसी तरह उन्होंने सितार, तबला और हारमोनियम बजाना सीखा। एक बार तो हद तब हो गई जब एक टाइपिस्ट उन्हें टाइपिंग सिखाने आने लगा।
स्टेज पर लगातार काम करते करते उनकी आवाज चली गई, जिसने उनके फिल्मी करियर को और बढ़ने से रोक दिया।
उनका प्रोफेशनलिज्म भी ऐसा कि अगर एक बार वो कहीं परफॉर्म कर रहे थे और उनकी बीमारी शुरू हो गई थी, तो उनका गला बैठ गया था, तो ऑडियंस ने कहा, नहीं आप बिना बोले आप परफॉर्म करें, और ऑडियंस उठ के नहीं गई, तो उन्होंने परफॉर्म किया बिना आवाज के और ऑडियंस बैठ के उनको देखती रही।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी किए जाने के बाद वहां शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब सरकार और प्रदर्शनों के मुख्य आयोजक रहे धार्मिक संगठन तहरीके लब्बैक में समझौता हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वो सभी प्रतिबंध दोबारा लगा दिए हैं जो साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत हटा लिए गए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दुआन ने पहली बार सऊदी अरब की सरकार पर पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि अर्दुआन ने तुर्की के साथ सऊदी के दोस्ताना रिश्तों की बात की और कहा कि उन्हें यह भरोसा है कि इसमें किंग सलमान की कोई भूमिका नहीं है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।